आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 14 जनवरी तारीख है आज, दिन गुरुवार। सर्दी में ठिठुरते कांपते हमने जनवरी आधा तो निकाल दिया, आधा और बचा है। कल दिल्ली NCR में गजब की ठंड थी। खैर, मैं नितिन ठाकुर हूँ, रोज लेकर आता हूँ देश का पहला हिंदी न्यूज मॉर्निंग पॉडकास्ट आज का दिन। और खास बात यह भी है कि पूरी सर्दियों जागा हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि 30 मिनटों में आपको देश दुनिया की सारी खबरें दे सकूं। लेकिन कुछ खबरें हैं जिन पर हम रोज थोड़ा विस्तार में बात करते हैं। आज वो खबरें कौन सी हैं बताता हूँ। इंडियन एयरफोर्स में 83 तेजस एयरक्राफ्ट शामिल होने जा रहे हैं, क्या है इनमें खास, पूछेंगे। एडल्ट्री के कानून को सेना पर लागू न करने के लिए क्यों कह रही है केंद्र सरकार, वो भी बताएंगे। और बिहार में रोज औसतन 9 मर्डर और 4 रेप हो रहे हैं, बढ़ते अपराधों पर नजर डालेंगे। लेकिन पहले प्रतीक वाघ हमारे से सुनते हैं हेडलाइंस।
गुड मॉर्निंग नितिन, आज की टॉप हेडलाइंस है, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम में एक अधूरे पड़े प्रोजेक्ट के घर खरीदारों की याचिका पर फैसला दे दिया है। अगर बिल्डर ने प्रोजेक्ट को समय से पूरा करके डिलीवरी नहीं की तो उसे घर खरीदार को पूरे पैसे वापस देने होंगे, वो भी ब्याज के साथ। बिल्डरों की मनमानी को पीठ ने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कहा है। देश भर के कई शहरों में मोबाइल ऐप के जरिए लोन देने और फिर ठगी के मामले सामने आने के बाद अब RBI ने बड़ा कदम उठाया है। RBI ने ऐसे मामलों को देखने के लिए एक वर्किंग ग्रुप का गठन कर दिया है जो लोन देने की प्रक्रिया को देखेगा और उस पर किस तरह से कंट्रोल किया जाए इस पर अपने विचार देगा। मुंबई में 200 किलो ड्रग जब्त करने के मामले में NCB ने महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान को गिरफ्तार किया है। समीर खान को NCB ने पूछताछ के लिए बुलाया था, विस्तृत जांच के बाद NCB ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कालेधन के खिलाफ आप सूचना देकर 5 करोड़ रुपए तक इनाम पा सकते हैं। कालेधन और टैक्स चोरी के खिलाफ सरकार ने एक मुहिम शुरू की है। आयकर विभाग ने भरोसा दिया है कि ब्लैक मनी की जानकारी देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। वित्त मंत्रालय ने कहा कि कर चोरी को रोकने और ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने की दिशा में ये कदम उठाया गया है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग के लिए सत्र की कार्यवाही शुरू कर दी है। पिछले सप्ताह अमेरिकी संसद परिसर में हिंसा में डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका को लेकर अमेरिका के निचले सदन में उन पर महाभियोग के लिए वोटिंग हुई। डेमोक्रेट्स ने राष्ट्रपति ट्रंप पर संसद पर हमला करने के लिए अपने समर्थकों को उकसाने का आरोप लगाया है। सर्च इंजन गूगल ने 21 जनवरी तक राजनीतिक विज्ञापनों पर रोक लगा दी है। कंपनी ने ये कदम अमेरिका के कैपिटल हिल में हुई हिंसा के बाद उठाया है। गूगल ने बताया कि पिछले हफ्ते हुई अभूतपूर्व घटनाओं और 20 जनवरी को अमेरिका में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को देखते हुए ये फैसला लिया है। और स्टार भारतीय शटलर साइना नेहवाल योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के दूसरे दौर में पहुंच गई है। पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 और लंदन ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साइना ने मलेशिया की किसोना सेल्वादुरे को हराया। 36 मिनट तक चले मुकाबले में साइना ने सेल्वादुरे को आसानी से 21-15 से हराया है।
इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में जल्दी ही 83 तेजस एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। लड़ाकू विमान तेजस की 48,000 करोड़ रुपए की डील को कल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मंजूरी मिल गई है। स्वदेशी लड़ाकू विमान है तेजस, 4 साल पहले वायुसेना में शामिल किया गया था। तो इस विमान में कुछ खासियत हैं जो दूसरे लड़ाकू विमानों से इसे अलग बनाती हैं। राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, ने भी कहा कि ये डील रक्षा क्षेत्र में गेम चेंजर साबित होगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि तेजस क्या चीज है, इसका महत्व क्या है। बता रहे हैं डिफेंस मामलों के जानकार और इंडिया टुडे मैगजीन के एग्जीक्यूटिव एडिटर संदीप उन्निथन।
इंडियन एयरफोर्स में 3 तरह के एयरक्राफ्ट होते हैं। एक जो है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो MiG-21 है अब फिलहाल, जिसे रिप्लेस करेगी तेजस। मीडियम एयरक्राफ्ट है, एक मीडियम कैटेगरी की एयरक्राफ्ट है जो रफाल हम खरीद रहे हैं फ्रांस से, और एक हेवी कैटेगरी में है जो Sukhoi-30 एयरक्राफ्ट है। तो ये तेजस जो है बहुत नंबर्स में हम इंडक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं बहुत साल पहले हमने रशिया से खरीदी थी एक MiG-21 जो एक समय पे 500, 600 MiG-21 थे। तो जब ये MiG-21 को रिप्लेस करने का समय आया तो इंडियन एयरफोर्स ये चाहती थी कि एक आधुनिकतम इंडिजिनस एयरक्राफ्ट हम इंडक्ट करें। शुरुआत ऐसे होता है 1983 में ये प्रोग्राम की शुरुआत हुई और 2001 में इसकी पहली फ्लाइट हुई और आप चल के 20 साल बाद सबसे बड़ी जो ऑर्डर हमने प्लेस किया है वो इस साल करने जा रहे हैं।
सर नंबर्स जो हैं वो बहुत बड़े हैं, 83 तेजस शामिल होंगे, तो इतनी बड़ी संख्या को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं?
जैसे आप जानते हैं इंडियन एयरफोर्स की जो स्क्वाड्रन्स हैं 40 स्क्वाड्रन्स की प्रोजेक्शन है, उनको मंजूरी दी गई है जो चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में यूज कर सके, इसलिए उनको 40 स्क्वाड्रन की मंजूरी दी गई है। लेकिन आज के दौर में इंडियन एयरफोर्स की नंबर्स, स्क्वाड्रन नंबर्स संख्या घट के 30 स्क्वाड्रन से भी कम हो गई है। ये इस वजह से कि बहुत सारे MiG-21 जहाज जो 1960s और 70s और 80s में भी उन्होंने इंडक्ट किए थे वो सारे जहाज अभी रिटायर होते जा रहे हैं और अब ऐसा रह गया है कि करीब 100 MiG-21 जहाज ही बचे हैं और इस कुछ 4 या 5 साल बाद वो भी रिटायर हो जाएंगे। तो इसीलिए नंबर्स की जो खेल में ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का बहुत महत्व है और हर रिटायरिंग मिग एक जैसे जितने आप MiG-21 रिटायर कर रहे हैं उनको तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से आप रिप्लेस कर सकते हो। तो ये बहुत सारे नंबर्स की जरूरत है इंडियन एयरफोर्स को, इसीलिए ये 83 संख्या भी बहुत कम है। उनको करीब 300 से भी ज्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत है और आगे चलकर उन्होंने तेजस के और भी बड़े मॉडर्न मॉडल्स को उन्होंने एक्वायर करने का प्लान किया है और उम्मीद है कि अगर ये Mark 1A सक्सेस रही और तो हो सकता है Mark 2 और मीडियम वेट फाइटर जैसे कि इसके जो मॉडर्न वर्जन्स है उसको भी इंडियन एयरफोर्स खरीदने का प्लान कर रहे हैं। उन्होंने कमिटमेंट दिया है, इंडियन एयरफोर्स ने गवर्नमेंट को कमिटमेंट दिया है कि वो 18 स्क्वाड्रन LCA और उसके वेरिएंट्स को खरीदेगी अगले 15 साल में, यानी कि करीब 300 LCA और उसके मॉडर्न वेरिएंट्स के जहाजों को वो खरीदेगी अगले 15 साल में।
सर एक सवाल टाइमिंग को लेकर है, जिस समय इसको मंजूरी मिली है उस वक्त को कैसे देखते हैं आप और मंजूरी के बाद भी एक लंबा वक्त तय करना होता है?
टाइमिंग ये आप अगर आप कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग की बात कर रहे हो या उसकी मंजूरी की बात कर रहे हो तो फिर एक जो है एक एरो इंडिया आने वाली अगले महीने के पहले हफ्ते जो एरो इंडिया हर 2 साल जो ऑर्गेनाइज करती है सरकार, तो उसकी ये सबसे बड़ी अनाउंसमेंट ये है कि भारत ने 83 जहाज खरीद लिए हैं और ये जो गवर्नमेंट की जो आत्मनिर्भर भारत की जो स्लोगन है ये एक तरह से सबसे बड़ा एंडोर्समेंट है कि सरकार जैसे अंग्रेजी में कहावत है इज पुटिंग इट्स मनी वेयर इट्स माउथ इज। तो इस तरह की जो कॉन्ट्रैक्ट पे कभी इंडिया की हिस्ट्री में इतनी बड़ी कॉन्ट्रैक्ट कभी प्लेस नहीं की गई, जो लगभग 48,000 करोड़ की जो कॉन्ट्रैक्ट है इतनी बड़ी कॉन्ट्रैक्ट कभी किसी कंपनी या किसी कंसर्न पे प्लेस नहीं किया गया और तो इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार बहुत सीरियस है ये आत्मनिर्भर भारत प्लान को लेकर और इससे बहुत सारे इंडस्ट्रीज ऐसे उभर आ सकते हैं, खासकर कि एरोस्पेस में जिस एरिया में हम बहुत पिछड़े रह गए क्योंकि हमारे खुद के एयरक्राफ्ट हम बना नहीं रहे थे, बहुत सारे हम इम्पोर्ट कर रहे थे रशिया से या फ्रांस से अमेरिका से, इसीलिए ये पहली वो जहाज है बहुत सालों बाद करीब 40 साल के बाद हमने अपने खुद की डिजाइन की गई एयरक्राफ्ट हम अपने देश में ही बना रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है और इसीलिए इतने नंबर्स और इतने बड़े बजट देकर उसको खरीदना एक बहुत बड़ी बात है।
केंद्र सरकार ने एडल्ट्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। एडल्ट्री क्या होता है? मैरिड होते हुए भी किसी दूसरे मर्द या औरत के साथ फिजिकल रिलेशनशिप रखने को एडल्ट्री कहते हैं। साल 2018 तक सेक्शन 497 के तहत एडल्ट्री अपराध होता था। सजा का प्रावधान था। फिर कोर्ट ने इस कानून को खत्म किया। अब केंद्र ने कोर्ट से अपील की है कि अदालत ने जो फैसला साल 2018 में दिया था उसे सशस्त्र बलों यानी आर्म्ड फोर्सेस के केस में लागू ना किया जाए। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि अगर सेना में किसी पर एडल्ट्री का आरोप साबित होता है तो उसके लिए पहले कार्रवाई के लिए क्या नियम थे, किस तरह के एक्शन लिए जाने का नियम रहा है सेना में। और इसे समझने के लिए मैंने बात की सैन्य मामलों के जानकार मेजर जनरल रिटायर्ड शशि अस्थाना से।
देखिए, सेना की जो वर्किंग कंडीशन है वो आम लोगों से अलग हैं और इसीलिए सेना में कुछ कड़े नियम बनाए गए हैं। और आपको मैं बता दूं दर्शकों को और सुनने वालों को, श्रोताओं को, कि जो आर्मी में हम लोग आईपीसी भी हमारे ऊपर लागू होता है और उसके ऊपर से आर्मी एक्ट भी हमारे ऊपर लागू होता है। तो जो सेना के जो जवान हैं और अफसर हैं और सेना के सभी मेंबर्स, उनके ऊपर ये दोनों ही कानून लागू होते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारी कंडीशंस थोड़ी अलग होने के कारण रूल्स भी थोड़े स्ट्रिक्ट बनाए गए हैं। मिसाल के तौर पे, जैसे एडल्ट्री, मान लो दो एडल्ट आपस में उनका रिश्ता बन जाता है, तो उस हालत में जहां तक सिविल का सवाल है और जो सुप्रीम कोर्ट ने भी रूलिंग्स वगैरह दी हैं, तो वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाता। हमारे केस में क्या है कि क्योंकि फैमिलीज अलग रहती हैं, जवान बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, तो उसको एक और एंगल दिया जाता है कि भाई अगर आप ऐसी कोशिश भी करते हैं तो यू आर ट्राइंग टू स्टील दी ब्रदर ऑफिसर्स अफेक्शन, यानी कि आप अपने भाई फौजी की जो प्यार है उसको चुराने की कोशिश कर रहे हैं, उसे एक ऑफेंस माना जाता है, स्टीलिंग दी ब्रदर ऑफिसर्स अफेक्शन। तो ये एक अलग कानून है। उसी मुताबिक जैसे कि ये होमोसेक्सुअलिटी का है, अभी होमोसेक्सुअलिटी यहां पर अलाउ नहीं की जा सकती क्योंकि जो बॉर्डर के ऊपर तो जवान ही जवान रहते हैं और उस कारण से अगर इस किस्म की चीजों में जवान इन्वॉल्व हो जाएं तो उनका जो प्रोफेशनलिज्म है और जो उनका सोच है और साथ ही साथ जो उनका अटेंशन है वो डाइवर्ट होने के चांसेस हैं। इसलिए ये दोनों चीजें सेंसिटिव हैं और इसको बहुत समय से, जब से ये आर्मी ट्रेडिशन शुरू हुई है, आर्मी एक्ट बना है, पहले ब्रिटिश का आर्मी एक्ट था, उसके बाद भारत ने भी उसको एडॉप्ट किया है और इस आर्मी एक्ट में ये तब से यही चलता आ रहा है और इसके ऊपर जो है वो मेरे विचार से कॉम्प्रोमाइज करना ठीक नहीं होगा।
सर, एक दलील जो केंद्र ने कोर्ट में दी है कि एडल्ट्री को अगर डीक्रिमिनलाइज किया जाता है तो आर्म्ड फोर्सेस के अंदर इंस्टेबिलिटी कॉज हो सकती है क्योंकि जो डिफेंस पर्सनल हैं उनसे लंबे वक्त तक परिवार से दूर रहने की उम्मीद की जाती है, जैसा कि आपने बताया भी, इस दलील को कैसे समझें?
इस दलील को, ये बिल्कुल सही दलील है क्योंकि आप ये देखिए कि मान लो एक यूनिट फील्ड में है, मान लो एक यूनिट समझ लीजिए आप चाइना बॉर्डर के ऊपर लड़ रही है, उनकी सारी फैमिलीज मौजूद हैं किसी पीस स्टेशन में और एक ऑफिसर रियर में उनका देखभाल कर रहा है। अब इस ऑफिसर के अगर किसी और से संबंध हो जाते हैं तो ना सिर्फ यूनिट का एनवायरनमेंट खराब होता है और आपस में बाकी जितने भी लोग हैं जो बॉर्डर पर हैं उनका ध्यान नहीं जाएगा कि भाई अगर मैं वापस जाऊंगा, भगवान जाने मेरी वाइफ वो मेरे साथ ही कहीं किसी और के साथ तो नहीं इस किस्म से रिलेशन बन जाएगा, तो एक इनसिक्योरिटी सी पैदा हो जाएगी कि अरे भाई हम क्यों फिर अलग रहे। अब आप ये देखिए कि जब भी आप अक्सर बताया जाता है जब भी किसी दंपति के बीच में संबंध खराब हो जाते हैं तो होते हैं भाई आपको साथ वक्त साथ गुजारना चाहिए, ऐसी दलील सारे उनको बड़े लोग देते हैं, कोर्ट भी यही दलील देते हैं, लेकिन हमारे केस में तो ये पॉसिबल नहीं है। और उस केस में अगर इस किस्म की इनसिक्योरिटी आ जाए दवान के दिमाग में या अफसरों के दिमाग में तो वो एक अटेंशन तो डाइवर्ट करेगी ना। इसलिए मेरे विचार से ये दलील जो है उसको सुप्रीम कोर्ट को उस हिसाब से, उस एंगल से लेना चाहिए कि ये वर्किंग कंडीशंस काफी अलग हैं बाकी लोगों से।
आखिर में एक सवाल और है, सेना को कई चीजों के लिए जाना जाता है और उन चीजों में जो एक बेहद अहम है वो है डिसिप्लिन, अनुशासन। उस फ्रंट पर भी क्या असर देखने को मिलेगा इसका?
हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये सब चीजें जो डिसिप्लिन, ये जो मैंने आपको बताया ना दोनों ऑफेंस, चाहे वो होमोसेक्सुअलिटी हो चाहे वो स्टीलिंग द ब्रदर अफेक्शन, ब्रदर ऑफिसर्स अफेक्शन या ब्रदर सोल्जियर्स अफेक्शन, ये दोनों जो है इसको हम आर्मी एक्ट में इसको डिसिप्लिन के तौर पे माना जाता है, तो वो उसको डिसिप्लिन केस माना जाता है और आर्मी एक्ट में भी उसी मुताबिक इसके ऊपर चार्जेस बने हुए हैं। और इससे डिसिप्लिन अगर इनको हटा दिया जाए तो डिसिप्लिन जाहिर है कि खराब होगा और इसके ऊपर डिसिप्लिन के आर्मी के ऊपर जो है वो खराब असर पड़ेगा। तो मेरे विचार से फौज की डिसिप्लिन को और वर्किंग कंडीशंस को, सर्विस कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए जो फौज के जो कानून हैं उनको उनके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए।
आज तक रेडियो आप सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में तीन आइकन दिखेंगे, उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन, तो उसे उंगली से जरा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई पर खबर से आगे की बात क्या है, उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां।
अब बढ़ते हैं बिहार की तरफ, जहां आपराधिक घटनाओं की बौछार सी हो गई है। आए दिन राज्य में हत्या, बलात्कार, लूट की खबरें आती हैं, यहां तक कि सरकार की नाक के नीचे पटना में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। ये सब हम क्यों कह रहे हैं? इसलिए क्योंकि इसकी एक नजीर मंगलवार को ही देखने को मिल गई, जब अपराधियों ने पटना में इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन हेड रुपेश सिंह की उनके घर के बाहर हत्या कर दी। इस घटना से बिहार पुलिस के इकबाल पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। गृह विभाग की कमान संभाल रहे नीतीश कुमार भी निशाने पर हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो आप मानेंगे कि जो मैं कह रहा हूं वो वाकई सच है। बिहार में पिछले साल जनवरी से लेकर सितंबर तक 2,406 मर्डर और 1,106 रेप की वारदात रिकॉर्ड की गई हैं। तो बिहार में बढ़ते अपराध की वजह जानने के लिए हमने बात की पटना में वरिष्ठ पत्रकार पुष्यमित्र से, और उनसे पहला सवाल यही किया कि स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक औसतन हर दिन 9 मर्डर, 4 रेप की घटनाएं बिहार में हो रही हैं। नीतीश कुमार दिसंबर महीने में 4 बार पुलिस ऑफिसर्स के साथ मिले, हाई लेवल मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो बिहार में अपराधियों के हौसले जो हैं वो इतने बुलंद कैसे हो गए?
बिहार में जो अपराधी बेलगाम है उसमें सबसे बड़ी जो गड़बड़ी मुझे अभी दिख रही है वो है कि सरकार का अपना कोऑर्डिनेशन ही बहुत साफ साफ नजर नहीं आ रहा है। एक तो बहुत कम मंत्री लोग मिलकर सरकार चला रहे हैं, दोनों पार्टियों के बीच बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, और नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय है और इस पर लग रहा है कि थोड़ी आपत्ति भाजपा को भी है। तो एक जो पॉलिटिकल बात मेरे समझ में आ रही है कि ये जो मिसमैनेजमेंट, कंफ्यूजन और तमाम तरह की चीजें हैं जो क्राइम कंट्रोल की दिशा में ठीक से सरकार को सोचने भी नहीं दे रही है। सरकार अगर कोशिश कर भी रही है तो उससे कोई खास नतीजा निकल नहीं रहा है, एक बात ये मेरे समझ में आ रही है।
पुष्यमित्र जी, 2005 में नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद बिहार में क्राइम काफी हद तक कंट्रोल हुआ था, जिसके चलते नीतीश कुमार को सुशासन बाबू सब कहते भी थे, मीडिया ने भी खूब कहा, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि समय के साथ नीतीश का जलवा फीका पड़ता चला गया और बिहार में एक बार फिर अपराधी दिन दहाड़े चौक चौबारे तांडव मचा रहे हैं एकदम?
देखिए, अगर अपराधी किसी राज्य में हावी होते हैं तो उसकी दो वजह होती है। पहला यह वजह होता है कि यहाँ जो अपराधी हैं वो राजनीति से जुड़े हैं, राजनीति का उनको संरक्षण है। दूसरा ये है कारण कि अपराधियों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, कोई बहुत खुशी खुशी अपराध नहीं करता है। अगर अपराधी को बेहतर विकल्प मिल जाए तो वो अपराध नहीं करता है। यही एक्सपेरिमेंट नीतीश कुमार ने किया था 2005 में। उन्होंने सैफ का इस्तेमाल जरूर किया था, लेकिन एक जो बड़ा काम उन्होंने ये किया कि जितने तरह के अपराधी थे उस वक्त, जो छीन झपट और क्राइम में थे, मर्डर वर्डर, किडनेपिंग वगैरह में, उन सबों के लिए को अपने तरीके से ठेकेदारी से जोड़ दिया और लोकल राजनीति से जोड़ दिया। तो वहाँ अब जैसे कोई अपराधी था वो अगर पंचायत चुनाव या जिला परिषद के चुनाव में, इस तरह के चुनाव में जीत जा रहा है, अपनी वाइफ को जिता ले रहा है, तो उसका फोकस बदल गया या कहीं से उसको कुछ ठेका मिल गया है, तो उस आदमी ने क्राइम को छोड़ के, ऐसे बहुत सारे लोग बिहार में क्राइम को छोड़ के पैसे कमाने में, ठेकेदारी में या पंचायत की राजनीति में बिजी हो गए, तो वो भी बड़ी वजह रही कि अपराध कम होने लगा और लोग धीरे धीरे अपराध से हटके कोई दूसरा काम करने लगे, सब बिजी होने लगे, सबके पास एक रोजगार जैसा उपलब्ध हो गया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि फिर से नीतीश कुमार की राजनीति आप खुद ही अस्थिर होने लगी। जो उनका एक तालमेल था बीजेपी के साथ वो संकट में दिखने लगा, वहां संकट में दिखा तो फिर वो एक बार अपनी पार्टी में कुछ आपराधिक छवि के राजनेताओं को जोड़ने लगे, फिर बीच में उनका राजद से भी तालमेल हुआ। तो ये जो अस्थिरता नीतीश कुमार के अपने पॉलिटिकल सीन में आई कि उनकी अपनी राजनीतिक स्थिति जब से डवाडोल होने लगी तब से बिहार में क्राइम बढ़ने लगा, जो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। उसकी वजह मुख्य रूप से यही है कि वो एक तो पूरी तरह से फोकस होकर काम नहीं कर पा रहे हैं, उनको उनके काम को डिस्टर्ब करने वाले ज्यादा लोग हैं, दूसरा उनकी अपनी राजनीतिक ताकत कमजोर हो रही है तो उनको कई जगह समझौता करना पड़ रहा है। ये दो तीन जो वजह है इसके कारण मुझे लगता है कि फिर से क्राइम बढ़ने लगा।
अच्छा ये बताइए कि बिहार में अपराध की संख्या में जो बेतहाशा वृद्धि देखी जा रही है उसके पीछे कोई सामाजिक पहलू भी देखते हैं क्या आप?
दो तीन चीजें आप देखिएगा कि पिछले 4-5 सालों में हुई, जब से क्राइम आप बढ़ा है आपने देखा होगा कि नोटबंदी के बाद बहुत सारे लोग जो अलग अलग जगह पर छोटे छोटे काम करते थे वो वापस बिहार में लौटे, फिर कोरोना का जो लॉकडाउन हुआ उस समय बेरोजगारी बढ़ी, वो जो बेरोजगारों की बड़ी फौज बिहार लौटी और उनके पास कोई काम नहीं है तो वो उनकी वजह से कई तरह के अपराध अभी बढ़े हैं। ये मैं उल्लेख करना भूल गया, अभी जैसे कि पिछले दिनों एक कोचिंग संचालक था वो किसी बैंक लूट में पकड़ा गया था, तो जाहिर सी बात है उससे उसका कोचिंग इतने दिनों बंद था तो वो इस तरह के अपराध में शामिल हो गया। इस तरह से कई और लोग पहले छोटी मोटी नौकरी करते थे, काम करते थे, इस तरह के लोग काफी अपराध से हाल के दिनों में जुड़े हैं, सब अपने अपने जगह से वापस लौटे हैं, काम उनका बंद हो गया है। तीसरी जो चीज यहाँ बढ़ी है आप देखेंगे कि जो प्रवासी लोग वापस बिहार में लौटे हैं और बिहार में गांव में आपको बहुत सारे ऐसे लोग देखेंगे, उनकी वजह से बिहार में रेप बहुत बढ़ा है। हालांकि कहने के हिसाब से ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि ऐसे लोगों की वजह से रेप की घटना और रेप का वीडियो बना के उसको वायरल करने की घटना ये बिहार में हाल के दिनों में बढ़ी है, और उसके लिए लोग बताते हैं कि ऐसे ही लोग जो वापस गाँव लौटे हैं वो जिम्मेदार है। इसकी वजह से एक और इफेक्ट पड़ा है, हम लोग समाज में बताया जा रहा है कि बाल विवाह फिर से बिहार में शुरू हो गया है, क्योंकि घटना फिर स्कूल का बंद होना ये दो फैक्टर ऐसे रहे कि गरीब तबके में लड़कियों को लग रहा है कि अब जल्दी शादी करा दी जाए, ये एक सामाजिक पहलू रहा है अपराध को बढ़ने का।
अब वक्त है आज के अखबार का। आज के अखबार प्रतीक वाघमारे रोज सुबह आते हैं, सुर्खियां लाते हैं, आज भी हाजिर हैं। प्रतीक, देश के अखबारों से शुरू करते हैं।
दैनिक भास्कर सबसे पहले मैं पढ़ रहा हूं, सुर्खी है, खरीदार पर एक तरफा एग्रीमेंट नहीं थोप सकता बिल्डर, सुप्रीम कोर्ट। तो नितिन, हम ये हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि जो घर खरीदार है उन्हें कई बार पोजीशन की सही तारीख पर जब उन्हें मिलना चाहिए नहीं मिल पाता है, साथ ही जो एग्रीमेंट पहले होता है उसके अकॉर्डिंग भी उन्हें फ्लैट नहीं दिए जाते हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अब ये साफ कर दिया है कि अगर एग्रीमेंट के मुताबिक फ्लैट नहीं दिया जाएगा तो फिर बिल्डर को, घर खरीदार को पूरा पैसा वापस लौटाना पड़ेगा, वो भी ब्याज समेत। तो ये एक फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बताया है, जो बिल्डर्स यूजुअली ऐसी मामले कई बार सामने आते रहते हैं।
हाँ प्रतीक, मेरे पास जनसत्ता है और जनसत्ता के फ्रंट पेज पर एक खबर है और खबर कुछ यूं है कि कठुआ में सीमा पर मिली 150 मीटर लंबी सुरंग, BSF ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में, एक गांव है, गांव का नाम है बोबिया, वहां अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटी एक 150 मीटर लंबी सुरंग का पता लगाया है। इसका निर्माण आतंकवादियों की घुसपैठ के मकसद से किया गया है। BSF के सतर्क जवानों ने पिछले 6 महीने में कठुआ और सांबा जिलों में इस तरह की तीसरी सुरंग का पता लगाया है।
और भास्कर में एक तस्वीर छपी है एयरप्लेन की, जिसका इंजन धसा हुआ है बर्फ में, और ये तस्वीर श्रीनगर की है। लिखा है, श्रीनगर से दिल्ली के लिए टेक ऑफ करने से पहले बर्फ से टकराया विमान, सभी 233 सवार सुरक्षित। तो श्रीनगर का जो एयरपोर्ट है वहाँ पे बर्फ को साइड में कर दिया गया था ताकि वो पिघल जाए, लेकिन बर्फ समय रहते नहीं पिघली और जब एक एयरप्लेन था जो कि टेक ऑफ करना चाह रहा था, जब उसके लिए वो आगे बढ़ा तो उसका एक इंजन जाके उस बर्फ के ढेर में धंस गया और कुल 233 लोग उसमें सवार थे, कोई हादसा नहीं हुआ है, सभी लोग सुरक्षित उसमें हैं।
हाँ प्रतीक, ये खबर और है और बहुत इंपॉर्टेंट है, जनसत्ता से पढ़ रहा हूँ। लिखा है कि अंतर धार्मिक विवाह के लिए नोटिस देना जरूरी नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ का फैसला। विस्तार में यह है कि अंतर धार्मिक जोड़ों की शादी के लिए नोटिस सबसे जरूरी नहीं होगा, ये वैकल्पिक होगा, मतलब आप दें चाहे ना दें। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बुधवार को अपने आदेश में कहा कि इस तरह की शादी के लिए नोटिस देना अनिवार्य नहीं है। अदालत ने आदेश जारी करने के क्रम में यह भी कहा कि विवाह रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिस निजता और स्वाधीनता के मूल अधिकारों का हनन है। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के न्यायाधीश विवेक चौधरी ने फैसला दिया। अदालत ने विशेष विवाह अधिनियम 1954 में संशोधन करते हुए आदेश दिया कि शादी करने वाले जोड़े को 30 दिन के पूर्व नोटिस देने की जरूरत नहीं है और ये भी कह दिया है कि विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अनुच्छेद 6 और 7 गलत हैं। बगैर किसी तीसरे की दखलंदाजी के जीवन साथी का चुनाव विवाह करने के इच्छुक जोड़ों का मूल अधिकार है। जी प्रतीक, ये बताइए विदेशी अखबारों में क्या छपा है आज?
विदेशी अखबारों की बात करें तो सबसे बड़ी सुर्खी इस वक्त ट्रंप को लेकर बनी हुई है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने बड़े अक्षरों में छापा है ट्रंप इम्पीच्ड अगेन और सुर्खी है द हाउस इम्पीचेस ट्रंप फॉर इंसाइटमेंट ऑफ इंसरेक्शन सेटिंग अप अ सीनेट ट्रायल। तो ट्रंप जो कि है उन्हें दूसरी बार इम्पीच किया गया है और ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि कोई राष्ट्रपति को दो बार इम्पीच किया जाए। इसमें डेमोक्रेट्स के अलावा 10 रिपब्लिकन लीडर्स ने भी इस इम्पीच को सपोर्ट किया है और ट्रंप पर ये आरोप थे कि संसद पर हमला करने के लिए उन्होंने अपने समर्थकों को उकसाया जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। ट्रंप को एक हफ्ते ही व्हाइट हाउस में बचे थे लेकिन उसके पहले ही उन्हें दोबारा से यूएसए में इम्पीच कर दिया गया। तो यही विदेशी अखबारों की सुर्खियां हैं। नितिन बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका, थैंक यू सो मच।
खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज, आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।
आज तारीख है 14 जनवरी, इतिहास बताता हूँ आज के दिन का। साल 1551 था, अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल का जन्म हुआ था। साल 1741 में आज ही के दिन मराठों और अफगानों के बीच पानीपत की तीसरी जंग लड़ी गई, बहुत निर्णायक जंग थी ये। 1758 में इंग्लैंड के राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हक दिया कि वो लड़ाई में जीती हुई संपत्ति को अपने पास रख ले, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई तरह के गुल भी खिलाए। साल 1964 में टेस्ट गेंदबाज रमेश चंद्र गंगाराम नादकर्णी ने आज के दिन ही लगातार 21 मैडन ओवर फेंकने का रिकॉर्ड बनाया था। और फॉर्मूला 1 रेस में फर्राटा भरने वाले पहले भारतीय नारायण कार्तिकेयन का जन्म भी हुआ था आज के दिन 1977 में। और मैं भूल ना जाऊं बता दूं, महाश्वेता देवी का भी जन्म हुआ था 1926 में आज ही के दिन। महान साहित्यकार थी और सामाजिक कार्यकर्ता भी। तो बस यही खत्म करते हैं आज का दिन, लेकिन आखिर में एक मेल है उसे जरूर शामिल करना चाहता हूं। मनीष कुमार यादव ने लिखा है, कोटा से लिखा है, कहते हैं कि मैं पिछले साल जुलाई से आज तक रेडियो पॉडकास्ट से जुड़ा हूं और लगभग सारे पॉडकास्ट सुनता हूं जो हमेशा ही मेरे लिए ज्ञानवर्धक साबित हुए। पॉडकास्ट की विशेषता है कि बहुत ही बेहतर ढंग से सुव्यवस्थित तरीके से खबरों का मूल्यांकन और उनके महत्व को ध्यान में रख के बनाया जाता है। नितिन ठाकुर को लगातार इतने दिन से सुनना हमेशा आनंददायक रहा, बहुत 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 शुक्रिया मनीष। इसी तरह साथ बनाए रखिएगा यही उम्मीद करते हैं। और आप भी हमें लिखना चाहें तो radio@aajtak.com पर मेल कर सकते हैं, अपने शो में आपका मेल शामिल करेंगे हम, हमें खुशी होगी। तो फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, हमारे शो के प्रोड्यूसर हैं ऋतुराज और साउंड इंजीनियर हैं सचिन द्विवेदी। और मुझे भी दीजिए इजाजत, मेरा नाम है नितिन ठाकुर, हैप्पी मॉर्निंग। और हाँ, सर्दी बहुत है, सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा।
दिन भर की हलचल के बाद जब शाम ढल जाए तो चले आइए आज तक रेडियो पर, खबरों के सबसे अहम पड़ाव तक ले चलेंगे आपको। तसल्ली से बताएंगे कि दिन में हुआ क्या और जो हुआ उसका मतलब आपके लिए क्या था। फील्ड पर रहने वाले रिपोर्टरों की फौज है हमारे पास, एक्सपर्ट्स का जखीरा है। ये सब होते हैं इस डेली न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट में, जिसका नाम है दिन भर, सोमवार से शुक्रवार हर शाम आज तक रेडियो पर।